प्रातः क्लास चल रहा था 30 अक्टूबर 1966, चौथे पेज के आदि में बात चल रही थी पहले पहले सब घर जाएंगे शांति धाम में, पीछे हम जाएंगे सुखधाम के लिए, क्योंकि तुम ये नॉलेज पढ़ रहे हो। ये पाठशाला है ना, ये कोई सत्संग नहीं है। दुनिया वाले जिसे सत्संग कहते हैं, वो जैसे ये साधु संत महात्माओं का सत्संग होता है, मनुष्यों का सत्संग होता है। वो वास्तव में सत्संग नहीं है, क्योंकि सत्य तो एक को कहा जाता है, बाकी तो इस झूठ खंड में सब झूठ ही झूठ। कहते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सत्य युग में सत्य होता है। जिसकी रचना सत्य ही करता है, गॉड को सत्य कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो वो गॉड फादर सुप्रीम सोल जब सोल वर्ल्ड से आते हैं तब सच्चा सत्संग होता है। और सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी तो सच्चाई की ही चाहिए ना। तो यहाँ ये पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? सत्यम शिवम सुंदरम की पाठशाला है, भगवान की पाठशाला है। और भगवान आएगा तो ज्ञान ही सुनाएगा ना, क्योंकि सत्य ज्ञान की जानकारी सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ही जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाते हैं। भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। उसी के पास सत्य की जानकारी है, ज्ञान का खूट भंडार है, जो कभी खूटता ही नहीं। जिसके लिए कहते हैं कि वो ज्ञान का ऐसा अखूट भंडार है जिसमें से सारा ही निकाल लिया जाए तो भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है। और वो संपूर्ण ज्ञान किसके प्रति सुनाते हैं? जरूर अपने बच्चों के प्रति सुनावेंगे, क्योंकि दुनिया में तो धर्म संप्रदाय बहुत है और नंबरवार है, नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं, परंतु अव्वल नंबर तो कोई एक ही होगा ना। मुसलमान लोग कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचते ऊंच को कहा जाता है, तो ऊंचते ऊंच जो भगवान है जब इस सृष्टि पर आवेंगे तो ऊंचते ऊंचे अव्वल नंबर धर्म की स्थापना ही करेंगे ना। और किसके प्रति करेंगे? अपने अव्वल नंबर बच्चों के प्रति स्थापना करेंगे, अव्वल नंबर बच्चों को ही सुनावेंगे। जो बाप को पहचानते हैं और धर्मावलंबी तो अपने धर्म पिता को मानते हैं, पहचानते हैं। वो तो ये नहीं जानते कि उनके धर्म पिता से ऊपर भी कोई एक और पिता है संसार में, क्योंकि वो तो निराकार मानते हैं। अरे निराकार तो मनुष्यों की आत्मा भी है, परंतु जैसे आत्मा शरीर धारण करती है वो परमपिता परमात्मा भी शरीर धारण करते हैं, परंतु अंतर ये है कि आत्माएं गर्भ से जन्म लेती हैं और परमपिता परमात्मा जिसे अयोनि कहा जाता है वो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जैसा गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो किस में प्रवेश करेंगे? ऊंचे आदमी का फर्नीचर भी ऊंचा ही होगा, और धर्म पिताएं भी प्रवेश करते हैं। कोई न कोई मनुष्य तन में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि 16 वर्ष से जो भी आत्मा आवेगी, 7 धाम से जो भी आवेगी वो सात्विक आत्मा ही आवेगी, और सात्विक आत्मा को कोई आधार चाहिए। 5 तत्वों का पुतला चाहिए, तो हरेक आत्मा सिर्फ धर्म पिताएं ही नहीं, जो भी द्वापर युग से आने वाली आत्माएं हैं वो कोई न कोई मनुष्य के चोले में पहले प्रवेश करती है। जैसे भगवान बाप प्रवेश करते हैं, परंतु अंतर ये है कि मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो संग के रंग में आ जाती हैं और भगवान संग के रंग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो एक ही है जो कर्म अकर्म विकर्म की गति जानता है, मनुष्य आत्माएं नहीं जानती है। इसलिए जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरती जाती है, संग के रंग में आती जाती है। भगवान तो संग के रंग में नहीं आता, वो कभी नीचे नहीं गिरता, वो सदा सत्य है। तो वो भगवान कौन है? वो भगवान भी निराकार है। जैसे आत्माएं निराकार हैं, इन आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी निराकार है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो निराकार भगवान कैसे हमको कहते हैं, कैसे बात करते हैं? मुसलमान लोग तो कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब क्या अर्श से फरमाया, आकाश से आवाज आई? नहीं, आवाज के लिए तो कोई यंत्र चाहिए ना, तो ये शरीर ही यंत्र है। जिस यंत्र में धर्म पिताएं भी पहले पहले प्रवेश करते हैं, फिर उस शरीरधारी के संग के रंग में आकर के नीचे गिरते हैं। परंतु भगवान तो नीचे नहीं गिरता। तन का आधार रहता है ज्ञान सुनाने के लिए, कर्म करने के लिए। ज्ञान तो मनुष्यों को ही सुनाएंगे ना, वो जानवरों को थोड़े ही सुना देंगे। भक्तों ने तो शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान घोड़े का रूप धारण करके आया, कच्छ मच्छावतार लेकर के आया। अरे भगवान जानवरों को आके पढ़ाई पढ़ाएगा? जानवर बुद्धि कैसे फैसला करेगी कि वो एक ही सत्य भगवान कौन है जो सत्य बातें सुना करके सत्यखंड की स्थापना करते हैं, सत्ययुग स्थापन करते हैं। निराकार भगवान शरीर में प्रवेश हो, अभी संगम युग में तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। उन बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, किनसे? तुम सन्मुख बैठे हुए को कहा जाता है, और उन दूर वालों को कहा जाता है जो सन्मुख नहीं होते हैं। तो कौन है? भगवान से दूर दूर कौन रहते हैं? जो और धर्म पिताओं को अपना पिता मानते हैं, भगवान के साकार रूप को पहचान नहीं पाते हैं। साकार में आए हुए निराकार को नहीं पहचान पाते। अपने धर्म पिताओं को जानते, बल वो धर्म पिताएं भी जब भगवान बाप के घर से आते हैं, सोल वर्ल्ड से आते हैं, तो वो भी निराकारी स्टेज में होते हैं। साकार तन में आने के बावजूद भी निराकारी स्टेज में होते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज झलकती है, आत्म की स्थिति झलकती है। जैसे कि देवान का नाम निशान न हो, तो वो निराकार भगवान भी जब आते हैं तो अपने बच्चों से बात करते हैं, जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं बाप से, आत्माओं से बात करते हैं। माना जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस में पास हो जाते हैं, उन बच्चों से ही बात करते हैं। सही स्थिति में स्थित होने वालों से ही बात करते हैं। स्वात्मा को कहा जाता है। सही स्थिति में देवताएं भी रहते हैं, तो भगवान बाप आकर के स्वधर्म का ज्ञान देते हैं, बताते हैं। जैसे गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह, स्व माने आत्मा, धर्म माने धर्म। अपनी आत्मा की धारणा में रहने से सदैव सुख में रहेंगे। पर धर्म में जाएंगे, पर माने दूसरा, तो दुखी होंगे। पर कौन है और सदा स्व कौन है? सदा शिव ही स्व है। आत्मा का कल्याण करने वाला सिर्फ एक शिव है, और कोई मनुष्य मात्र आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। एक भगवान ही है जो सृष्टि पर आकर के स्वधर्म में रहना सिखाते हैं। और स्वयं भी सदैव स्वयं स्थिति में रहते हैं। जो देवान में रहते हैं वो तो देवान की दुनिया ही बनाएंगे, देवान में मनुष्य रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों का मन चंचल होता है। मन सदैव चिंतन करता रहता है, अच्छा चिंतन करे या बुरा चिंतन करे। लेकिन भगवान को तो चिंतन करने की दरकार है, है उसको तो चिंतन करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वो तो सदैव त्रिकालदर्शी है, कुछ भी मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। मनुष्य आत्मा को दरकार है, क्योंकि आत्मा तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक पार्टधारी है। पार्टधारी रंगमंच पर भांति भांति के चोले बदल करके पार्ट बजाता है। मनुष्य आत्माएं भी 84 के चक्र में आती हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती रहती है, परंतु कोई भी मनुष्य आत्मा अपने पार्ट को नहीं जानती कि मैंने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के क्या क्या कौन कौन सा चोला धारण करके पार्ट बजाया। क्यों नहीं जानती? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आकर के नीचे गिरते हैं। मनबुद्धि रूपी आत्मा नीचे की ओर गामी हो जाती है, निम्नगामी। आत्मा की कलाएं क्षीण होती जाती है। बुद्धि का स्तर गिरता जाता है। स्मृति भ्रंश हो जाती है। कैसे भ्रंश होती है वो भी बताया, जैसे गीता में लिखा है, संगा संजायते कामा। संग करने से कामना उत्पन्न होती है, चाहे बुद्धि से संग करें, मन बुद्धि से संग किया, दृष्टि से संग किया, ज्ञानेंद्रियों से संग किया, चाहे कर्मेंद्रियों से संग किया। संग का रंग मनुष्य आत्माओं को जरूर लगता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। देवताओं को संग का रंग कम लगता है, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से ही संग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं, और सूक्ष्म होने के कारण रंग भी सूक्ष्म लगता है, तो पतन भी कम होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि देवताएं गिरते नहीं है, देवात्माओं की भी कलाएं कम होती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में भी लिखा है, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कलाएं रह जाती है। क्योंकि आत्माएं भी तो जन्म जन्मांतर शरीर में रहती है ना। दो चीजें हैं, एक आत्मा और शरीर। दोनों में विनाशी क्या है? शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा होते हुए भी जो चंचल आत्मा है मन बुद्धि वाली, वो 5 तत्वों के बने शरीर में रह करके विनाश को पाती है। माना क्या आत्मा खत्म हो जाती है? नहीं, शक्ति क्षीण होती जाती है, क्षरित होती जाती है। इसीलिए तो बोला है कि आत्मा दो प्रकार की होती है, एक क्षरित होने वाली क्षर मनपतित होने वाली और एक अक्षर जो कभी पतित नहीं होती, वो है परमपिता परमात्मा। तो जो क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, क्षरित होने का कारण है शरीर में रहना, माने देह वाहन में रहना। देह वाहन में रहने की प्रैक्टिस अगर खत्म हो जाए और सदैव आत्म की स्टेज में रहे, आत्मा के स्वरूप को पहचान करके आत्म की स्थिति में टिके, देह को, देह के पांच तत्वों को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद ही न करे, निरंतर आत्मिक स्टेज रहे, तो संग का रंग लगेगा, नहीं लग सकता। तो यही बात भगवान बाप को आकर के सिखानी पड़ती है कि तुम आत्मा अविनाशी हो, लेकिन अविनाशी होते हुए भी तुम आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है संग के रंग में आने से, शरीर में आने से, इस दुनिया के सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां हैं तभी तो सुनेंगे, कानों से, आंखों से देखेंगे, हाथों से कर्म करेंगे। अगर ये कर्मेंद्रियां न हो आत्मा को, तो कैसे सुनेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे कार्य करेंगे? आत्मा को कर्मेंद्रिया न हो तो बोलेंगे कैसे? तो आत्मा सुनती है ना, आत्मा ही सुनती है। और अभी भगवान बाप आकर के आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। क्या, किसको पढ़ाते हैं? माना है अकेली आत्मा को कैसे पढ़ाएंगे बिना शरीर के? भगवान आकर के आत्मा को ही पढ़ाते हैं, मतलब ये हुआ जो देह भान में रहते हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं। बल सन्मुख बैठे हो तो भी देवान के कारण उनकी बुद्धि कहां भागेगी? है बाहर के धंधे धोरी में भागेगी, बाहर की दुनिया में भागेगी, क्योंकि देह अभिमानी है। तो तुम बच्चे जो निरंतर अभ्यासी हो जाते हो, उनको भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं। कब पढ़ाते हैं? सन 36 से पढ़ाते हैं, 1947 से पढ़ाते हैं, 1976 से पढ़ाते हैं। भगवान बाप की आत्मा किसको पढ़ाते हैं? 1976 में अगर कहें पढ़ाते हैं तो 1976 से लेकर अब तक जो भी पढ़ाई पढ़ने वाले ब्रह्मा वत्स हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही आते हैं, ब्रह्मा नाम रखते हैं, तो जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनको आत्माभिमानी अभी कहेंगे या देहाभिमानी कहेंगे? है? अभी क्या कहेंगे? अभी सभी बच्चों में परसेंटेज में कुछ न कुछ देवान रहता ही है, तो देवानियों को पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए गायन है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि माना घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, जब सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, और साथ में ब्रह्मा वत्स भी, चाहे वो बच्चा बुद्धि बन करके पढ़ रहे हों, और चाहे वो सालिम बुद्धि बन करके एडवांस ज्ञान पढ़ रहे हो, ज्ञान की गहराइयों में जाने वाले बने हो, फिर भी आत्मिक स्थिति पक्की करने के लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? जन्म जन्मांतर का देहभान भरा हुआ है, सुख भोगने की रग पड़ी हुई है, इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है, तो वो लंबे समय की रग अभ्यास करने के लिए टाइम तो लेगी ना। तो ये लंबा टाइम चला जाता है ब्राह्मण बच्चों को भी अभ्यास करने के लिए, आत्मिक स्थिति धारण करने के लिए, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अणो अणियांसम, अणु से भी अनुरूप हूं, अति सूक्ष्म हूं, मेरी आत्मा की ज्योति इन आंखों से निकल रही है, आत्मा निकल जाती है तो आंखों की ज्योति लाइट रहती है आत्मा में, वो आंखों में नहीं रहती, तो मैं आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं जैसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीपक बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, जहां हवा न चलती हो बिल्कुल, वहां दीपक हिलेगा डुलेगा नहीं? डुलेगा। तो ऐसी स्टेज हो जाए आत्मा की, ऐसी स्मृति पक्की हो जाए कि ज्योति बिंदु आत्मा के सिवाय और कुछ याद न रहे, तब कहेंगे मन कंट्रोल हुआ। तो ऐसी आत्मिक स्थिति की पढ़ाई प्रैक्टिकल जीवन में पढ़ने वाले नंबरवार निकलेंगे या एक साथ निकलेंगे? नंबरवार ही निकलते। इसलिए बताया बताया भगवान की वाणी नहीं, ब्रह्मा के मुख से बताया। क्या? कि सन 76 में 2 लेट का बोर्ड लगेगा, माना 2 लेट का बोर्ड का मतलब क्या? कि आत्मिक स्थिति में पक्कापन लाने वाली दो ही आत्माएं निकलेंगी, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की आत्माएं। जैसे बीज होता है, एक बीज होता है दो दल वाला, प्रवृत्ति मार्ग का हुआ ना, और एक बीज होता है दो दल नहीं होते हैं, एक ही होता है, तो कहेंगे निवृत्ति मार्ग वाला। तो दो आत्माएं जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच की हीरो पार्टधारी है वो प्रत्यक्ष होती है, बाकी के लिए कहा जाता है टू लेट का बोर्ड लग गया। फिर एक ही आत्मा प्रत्यक्ष होगी क्या? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगी और आत्माएं सच रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष नहीं होती है क्या? तो गायन है अष्ट देवों का, अष्टापद जैनियों में अर्बुदाचल पर्वत को, आबू पर्वत को अष्टापद भी बोला है, जहां से आठ पद संसार के जो ऊंचे थे ऊंचे पद हैं वो डिक्लेयर होते हैं, और धर्मों में भी उन आठ श्रेष्ठ आत्माओं का गायन है। मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह मियां के तख्त को आठ फरिश्तों ने उठाया, तो वो आठ आत्माओं को प्रत्यक्ष होने के लिए भी ज्यादा लंबा टाइम चाहिए या 40 वर्ष ही चाहिए? 36 से लेकर 76 तक वो दो आत्माओं की बात थी, बाकी आठ आत्माएं प्रत्यक्ष होने के लिए लंबा समय चाहिए या नहीं चाहिए? है नहीं चाहिए? ज्यादा लंबा समय चाहिए। कितना है? वाणी में ही बता दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष लगते हैं। तो भगवान बाप के जो बच्चे हैं, जो बाप को पहचानते हैं, बाप के गले का हार बनते हैं, वो रुद्रमाला और विजयमाला गाई हुई है। रुद्रमाला तो रुद्र की माला है, रुद्र उसे कहा जाता है जो रौद्र रूप धारण करता है। भगवान बाप जब आते हैं तो जो यज्ञ रचते हैं ज्ञान का, उसका क्या नाम रखते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रखते, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रखते, विष्णु ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रखते, क्या नाम रखते? रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र भयंकर को कहा जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शंकर को रुद्र कहते हैं। क्या भयंकर काम करता है? जो भयंकर काम कोई भी धर्म पिता इस मनुष्य सृष्टि पर नहीं कर सका। क्या काम? और धर्म पिताएं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन पुरानी परंपराओं का नाश नहीं करते। पुराने धर्मों का, जरा जीर्ण धर्मों का, जिनमें अनेक प्रकार की कुरीतियां पैदा हो जाती हैं, उनका नाश नहीं कर पाते। कोई भी धर्म पिता ने ऐसा कार्य किया हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी, तो हिस्ट्री में बताओ किसने किया? किसी ने किया? नहीं किया। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद अगर बिस्की डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा? सारा विषैला बन जाता। वो धर्म पिताएं आकर के कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनाए, उनके धर्म के फॉलोअर्स उन बातों को तस्दीक करते हैं। ढेर की तादाद में ऐसे निकलते हैं धर्मावलंबी जो उन बातों को मानते हैं, लेकिन दुनिया नीचे क्यों गिरती जाती है? कोई कारण तो होना चाहिए। यही कारण है कि पुराने पुराने धर्मों की कुरीतियां, जो धर्म पुराने होते जाते हैं, उनके ऊपर काबिज होने वाले मठ मंडलेश्वर वो उस धर्म पिता के धर्म को नीचे गिराते रहते अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। और भगवान बाप जब आते हैं तो उसी शंकर पाठधारी में प्रवेश करते हैं जो सब धर्मों का, जो कलयुग के अंत में तामसी बन चुके हैं, चाहे वो सनातन धर्म ही क्यों न हो, सब तामसी बन जाते हैं। उन सब धर्मों में फैली हुई कुरीतियों को खंडन कर देता है, एक सद्धर्म की स्थापना और अनेक विधर्मियों का, विधर्म का विनाश करा देता है। सत्य सनातन धर्म का अनुमोदन और जितने भी झूठे हैं, झूठी प्रकार की धारणाएं हैं, झूठे धर्म हैं, उन सब का खंडन करा देता है। ये काम अकेले करता है क्या? नहीं, अकेला चना तो बाहर ही नहीं फोड़ सकता। ये दुनिया तो हेल है बाहर, इसमें अनेक धर्मों को भस्म करने के लिए संगठन का सहयोग चाहिए। और ऐसे ही संगठन का सहयोग चाहिए जो पक्के पक्के आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हों, उनमें पार्श्व दानर को पहले चुना जाता है। वो अष्टदेव ही निकलते हैं और उनका टाइम भी नुदा हुआ है। छिहत्तर से लेकर के 40 वर्ष और जोड़ दो, जैसे अव्वल नंबर पेयर को निकलने के लिए 40 वर्ष लगते हैं, वो तो माता पिता हैं, सचरूपी रंगमंच के हीरो पार्टधारी हैं, ऐसे ही उनसे जो रचना रची जाती है वो तो प्रजा है ना, अव्वल नंबर की प्रजा है, वो प्रजा को तैयार होने में भी 40 वर्ष, उन अष्ट देवों को निकलने में 80 वर्ष लग जाते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने में। कब प्रत्यक्ष होते हैं? जब घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि फैलती है, बाहर की दुनिया के जो भौतिकवादी आत्माएं हैं, भौतिकवाद में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, अपन को देह समझते हैं, पांच भूतों का संगठन समूह समझते कि हम तो देह हैं, आत्मा नहीं समझते। उनकी संख्या तो संसार में बहुत है, ब्रह्मा भी देहधारी गुरु था या आत्माभिमानी गुरु था? है प्रूफ? प्रूफ है कि देवताओं की पूजा होती है और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। दाढ़ी मूछ वाला है, दाढ़ी मूछ वाले तो पतित तो मनुष्य ही होते हैं और ब्रह्मा की गोद में आदि से अंत तक पलने वाले जो सारी दुनिया के आधार मूर्त और बीज रूप ब्राह्मण हैं, वो भी दो प्रकार के, एक ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी को प्रेफरेंस देते हैं, महत्व देते हैं, ब्रह्मा की गोद को कुख को महत्व नहीं देते, इसलिए वो मुख वंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं श्रेष्ठ। और जो ब्रह्मा की कुख गोद को महत्व देते वो कुख वंशावली ब्राह्मण हुए। कुख अर्थात देह, देह में बुद्धि लिपट जाती, उस देह में आया हुआ जो परमपिता परमात्मा मातृ रूप में कार्य करता है, माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, उसकी वाणी को नहीं पहचान पाते, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। एक गीता ही है दुनिया में ऐसा ग्रंथ जिसे भगवान वाच कहा जाता है। उस गीता में जो आया हुआ ज्ञान है उसको किसने वाच किया, किसने बोला? भगवान ने बोला। और दुनिया में कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता हो, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत, और भगवान जो गीत गाएंगे वो मुख से ही गाएंगे या किताब लिखेंगे? धर्म पिताएं आए, उन धर्म पिताओं ने कोई किताब लिखी क्या या मुख से सुनाया? क्या किया? मुख से सुनाया। ऐसे ही भगवान बाप भी जब आते हैं तो जिस मनुष्य तन का आधार लेते हैं उसके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा जाता है। जिस ज्ञान यज्ञ में सारे संसार की आहुति दी जाती है, सब कुछ स्वाहा, पूरी पुरानी दुनिया स्वाहा, पुरानी दुनिया स्वाहा, पुराने तमो प्रधान आत्मा स्वाहा होती है क्या है? आत्मा तो नहीं स्वाहा होती, आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन वो आत्मा जिस है पंचभूतों के बने हुए शरीर के संपर्क संसर्ग में जन्म जन्मांतर आती है, वो शरीर नष्ट होते हैं, पंचभूत तामसी बनते हैं, वो भी स्वाहा होते हैं। तो पुरानापन साफ स्वाहा होता है। कुछ भी पुराना नहीं रहता। भगवान आकर के जो नया ज्ञान सुनाते हैं उस नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। नई दुनिया की स्थापना नए ज्ञान के द्वारा। और वो नया ज्ञान भगवान बाप ही सुनाते हैं। जो नया है वो सात्विक है, जो पुराना है वो तामसी है, क्योंकि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम। ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है, चाहे वो बेसिक ज्ञान हो और चाहे वो एडवांस ज्ञान हो। जैसे जैसे कोई चीज का विस्तार होता जाता है उसमें से सार लोप होता जाता है। अभी दुनिया में बेसिक का ज्ञान ज्यादा विस्तार को पाया हुआ है या एडवांस ज्ञान ज्यादा विस्तार को पाया हुआ है? है? बेसिक ज्ञान सारी दुनिया में जबरदस्त विस्तार को पाता जाता है, तो उसमें ओरिजिनलिटी रही, सच्चाई लोप होती जाती है। एडवांस में भी ऐसे ही है। आदि में सात्विक और 40 वर्ष पूरे होते होते जितना विस्तार को पाना चाहिए, क्योंकि बीज रूपात्मा है, संसार के बीज तो थोड़े होंगे या बहुत होंगे? है? बीज छोटा होता है, सार रूप में होता है, या पेड़ की तरह विस्तार होता है? सार होता है। तो वो बीज रूपात्मा है जो भगवान के गले का हार बनती है, विजय माला या रुद्रमाला कही जाती है, वो 108 आत्माएं हैं, 108 जोड़ियां हैं। उनको तैयार होने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये दूसरे 40 वर्ष पूरे होने पर, क्योंकि पहले 40 वर्ष पूरे होते हैं तो सारी दुनिया का जो एक बीज है, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बीज, वो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद जो आठ हैं, जो भारतीय परंपरा में शंकर के सर के ऊपर आठ की माला रखी हुई दिखाई जाती है, जिन्हें भगवान बाप अपने से भी ऊंचा रखते हैं। कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है, उसमें बहुत माता पिता की आस होती है, तो प्यार में आकर के सर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे दिखाते हैं गंगा सर पर चढ़ गई और नदियों को नहीं दिखाया, क्यों? और नदियां जो चैतन्य रूप में नदियां बनती हैं, उन नदियों के काम के आधार पर नाम भी पड़ते हैं। उन नदियों को इतना भगवान ने प्रेफरेंस नहीं दिया, क्यों? गंगा को बहुत प्रेफरेंस दे दिया, क्यों? जो दुकान संभालने वाले बच्चे होते हैं, बाप की दुकान को कारखाने को संभालते हैं, तो उन बच्चों के प्रति प्यार होता है ना बाप का। बाप का प्यार चाम से होता है या काम से होता है? तो भगवान बाप भी देखते हैं कि जो मेरा कार्य है ईश्वरीय ज्ञान सारे संसार में फैलाना, ज्ञान सुना करके, ईश्वरीय ज्ञान दे करके पतितों को पावन बनाना, इस कार्य में जो चैतन्य नदी सबसे आगे जाती है, उसका नाम भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रसिद्ध है और भगवान बाप भी उसे अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि काम लेना है। जैसा काम वो गंगा करती है, ऐसा काम और कोई नहीं करता। अरे वो गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? है? हाँ जी, इसलिए बोला जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो भारतीय परंपरा में शास्त्रों में अब्बल नंबर सन्यासी कौन गाया हुआ है? भीष्म पितामह गाया हुआ है। और वो भीष्म पितामह कौन से देवी या देवता को सबसे जास्ती मान्यता देता है? है? गंगा को देता है। आज भी गंगा के किनारे जब मेले लगते हैं तो देखा जाए कि गंगा के किनारे सन्यासी चौकड़ी मार के ज्यादा तादाद में बैठते हैं या गृहस्थी बैठते हैं? सन्यासी बैठते हैं, परंपरा चली आई। तो ये गंगा और अष्टदेव ये अंत में प्रत्यक्ष होते हैं। पहले अष्टदेवों को प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि वो बाप के फर्स्ट क्लास बच्चे हैं। कैसे फर्स्ट क्लास? बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में पास विदानर होते हैं, कितने टाइम में? परीक्षा का टाइम निर्धारित होता है, टाइम है निर्धारित 40 वर्ष। तो उन 40 वर्षों में जो पास विद ऑनर हो जाएं, तो टीचर की दृष्टि में ऊंचे हुए या नीचे हुए? ऊंचते ऊंचे हुए। और वो जन्म जन्मांतर सहयोग भी ज्यादा करेंगे या कम सहयोग करेंगे? ज्यादा सहयोग करते। तो वो 8 आत्माएं हैं कि भगवान जा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं और शिव बाप का रूप बदल करके शिव बाबा कहे जाते हैं। क्या शिव बाबा और शिव बाप में अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? शिव है आत्माओं का बाप और शिव बाबा आत्मा प्लस देहधारी बच्चे उनका बाप। और जो बाबा कहा जाता है साकार का मेल, वो सभी साकार मनुष्य मात्र का बाप है, इसलिए शिव बाबा है। इसलिए बोला वो सच रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है और हीरो पार्टधारी सभी सीन में पार्ट बजाता है या आदि और अंत में पार्ट बजाता है? हैं? सभी सीन में पार्ट बजाता है। 4 सीन है ब्रॉड ड्रामा के, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों सीन में पार्ट तो बजाता है, लेकिन कैसा पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है या प्रत्यक्ष हो जाता है शिव बाबा? है गुप्त पार्ट बजाता है, क्योंकि बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं आत्माओं का, तो वो भी गुप्त पार्ट बजाते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं या सन्मुख आते हैं? है पर्दे के पीछे रहते हैं। तो बाप का बच्चा भी बाप को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ऐसे नहीं कि 84 जन्मों में पार्ट नहीं बजाता शिव बाबा, पार्ट तो बजाता है परंतु कोई उसे पहचान नहीं सकता। हाँ, जिन्होंने बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ी है पास विदानर की, वो तो जरूर पहचानते होंगे। चलो दुनिया में डिक्लेयर न करें कि ये शिव बाबा है, भगवान बाप का प्रतिनिधि है, जिसे दूसरे धर्म वाले अल्लाह मियां गॉडफादर कहते हैं उसका प्रतिनिधि है, क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग में इतना ज्ञान तो हो नहीं सकता। कितना? जो कोई भगवान बाप को क्लियर कर सके, कोई करता है? कोई भी नहीं करता। तो वो 8 आत्माएं भी भगवान बाप को भले डिक्लेयर नहीं कर पाती, लेकिन अंदर उनमें वो संस्कार पढ़ाई का भरा हुआ है कि वो बाप को जन्म जन्मांतर छोड़ नहीं सकती, जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर के रहती है। परंतु माया किसी को छोड़ती है क्या? माया किसी को छोड़ती नहीं है। ऐसी पावरफुल है रचना माया बेटी।